नमस्ते, मैं हूँ शुचि और आप सुन रहे हैं मुझे वार्ता पे। तो स्वागत है आपका एक नए कार्यक्रम में जिसका नाम है काव्य रचना, जहाँ हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महान कवियों के बारे में जिन्होंने अपने विचार और शब्दों को बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविताओं के जरिए बयां किया है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसने इस दुनिया और इसके लोगों को कई अनमोल चीजों से नवाजा है। इनमें से एक है कवि और उनकी कविताएं, जो हमारे देश की सबसे महान शैलियों में से एक है। एक कवि जो प्रकृति और जीवन से जुड़ी असल सच्चाई को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने पेश करता है, जिनकी कविताएं लोगों को अलग तरह से सोचने और समझने के लिए मजबूर करती हैं। एक कवि जो अपनी कविताओं से अलग अलग भाषा और संस्कृति को एक साथ संजोता है। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो कबीर दास जी के नाम का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। कबीर दास जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का ये कथन भी करता है, काशी में प्रगट भये रामानंद चैताए। कबीर दास के असली माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कबीर दास जी का जन्म ब्राह्मण के घर एक विधवा के गर्भ से हुआ था और कबीर दास जी के जन्म लेते ही उन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। तभी तालाब के किनारे से गुजर रही नीरू और नीमा नामक दंपति का उस बच्चे पर नजर पड़ी। चूंकि वो नी संतान थे, इसलिए बालक कबीर दास को उठाकर अपने घर ले आए। इस प्रकार कबीर दास का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक दंपति के घर में हुआ। बड़े होने के बाद वो अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगे। वो सूत का कारोबार करते थे, जिसमें सूत काटकर कपड़े बनाने का काम करते थे। इनका विवाह लोई नाम की कन्या से हुआ, जिससे एक पुत्र कमाल तथा पुत्री कमाली का जन्म हुआ। कहते हैं कि स्वामी रामानंद ने कबीर दास को मुसलमान मानकर दीक्षा देने से मना कर दिया था। एक दिन कबीर दास जी सुबह अंधेरे में ही काशी में गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। उसी रास्ते से स्वामी रामानंद सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे और स्वामी रामानंद का पैर जब कबीर दास से टकराया तो उनके मुंह से निकला राम राम। बस कबीर दास जी को दीक्षा मिल गई और उन्होंने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। वो साधु संतों की संगति कर उनसे ज्ञान की बातें सीखते। कबीर दास जी श्री राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही श्री राम किसी खास ढांचे में बंध जाते, जो कबीर दास को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। कबीर दास जी श्री राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। कबीर दास जी सादगी से रहना, सादा भोजन करना पसंद करते थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से भी वो समाज को इन आडंबरों से मुक्त करना चाहते थे। कबीर दास जी की भाषा सधुकड़ी और मिश्रित भाषा है। इन्होंने लगभग सभी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें से हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी मुख्य है। कबीर दास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। बीजक के तीन भाग किए गए, रमैनी, सबद और साखी। कबीर दास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में ही गुजारा, लेकिन वो मरने के समय मगहर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय लोग मानते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है और काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जब कबीर दास जी को अपने आखिरी समय का अंदेशा हो गया तब वो लोगों की इस धारणा को तोड़ने के लिए मगहर चले गए। कबीर दास को समाज के एक ऐसे संत के रूप में माना जाता है जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन से लोगों को आईना दिखाया है बल्कि आज तक अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन की सीख देते रहे हैं। वैसे तो उनकी लिखी हुई कई रचनाएं हैं पर मैं यहाँ उनके द्वारा कहे कुछ दोहों को सुनाऊंगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमारे मुख से निकलने वाली बातों को अत्यधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को भी प्रसन्नता हो और खुद को भी प्रसन्नता महसूस हो। हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे किसी को बुरा ना लगे और उनके मन को ठेस ना पहुंचे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात ज्ञान का महत्व धर्म से कहीं ज्यादा ऊपर है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के धर्म को किनारे रख उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। कबीर दास जी उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मुसीबत में तलवार काम आता है ना कि उसको ढकने वाला म्यान, उसी प्रकार किसी विकट परिस्थिति में व्यक्ति का ज्ञान काम आता है ना कि उसकी जाति या धर्म काम आता है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी तू रख्यो उरझाई रे। अर्थात तुम कागज पर लिखी बात को सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वो सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और लिखता हूँ। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं, मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझाकर क्यों रख देते हो? जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, पर एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपने विचारों से समाज के हर वर्ग के लोगों को जीने की राह दिखाई। जाति धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीबी जैसे हर तरह के मानवीय बंधनों को तोड़ते हुए संत कबीर दास ने समाज को इंसानियत और सच्चाई का आईना दिखाया है। दोस्तों ये है काव्य रचना कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे थे वार्ता पे, और ये है ग्लिट्स डिजिटल प्रोडक्शन।